नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
हमने टाइम बदल दिया है मंगल आरती का, वही है 5 बजे, वही राधा मदन गोपाल जी हैं, वही संसार दावानल, वही युग धर्म, सब कुछ वही है, प्रभुपाद की कृपा। प्रश्न है हम कहाँ हैं, बाकी सब तो वही है, प्रश्न है हम कहाँ पर हैं। चलो कोई नहीं, तो जागृति में आप लोगों का स्वागत है, हमारे इस महीने का दूसरा जागृति है, शायद दूसरा है, एक तो नहीं, मंथन जो हुआ था, अच्छा वो 30 को हुआ था, तो इस महीने की पहली जागृति। तो हम अब तक रिस्क कि भगवान के लिए हम कौन सी चुनौतियों को स्वीकार कर रहे हैं, कौन से रिस्क ले रहे हैं, मंगल आरती से शुरुआत कर है ना। हाँ, कई बार जो हमारे मन के अनुकूल नहीं, वो इस संसार में बहुत बड़ा खतरा मोल लेना होता है। तो जब तक हम आध्यात्मिक जीवन में कुछ ऐसा नहीं करते कि जो हमारे पहले के भौतिक जीवन से अलग हो, तब तक हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि भगवान भी हमारे लिए कुछ अलग करें। ये नियम, इसको कहते हैं द लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का अर्थ है कि जैसे भगवान ने कह दिया ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तो वही भगवान ये यथामाम प्रपद्यन्ते जो कहे हैं, भगवान ये भी बोले हैं कि जो मेरे भक्त हैं, भगवान विशेष रूप से, कौन सा श्लोक है, सम्मोहम सर्वभूतेषु, किसको पता है आगे, नमे द्वेष्टोस्ति न प्रिया, ये भजन्ति तु माम भक्त्या, कि जो प्रेम से स्वेच्छा से मेरे भजन में लगता है, भगवान कहते हैं कि मैं विशेष कृपा उसे देता हूं। अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू कीप डूइंग द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन येट एक्सपेक्ट अ न्यू रिजल्ट देन यू आर इन अ बिग इल्यूजन। वही चीज हम बार 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 यदि करते आ रहे हैं, लेकिन अपेक्षा हम क्या रखते हैं कि कुछ नया रिजल्ट मिलना चाहिए, नहीं, नया रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक कि हम कुछ नया करने के लिए प्रेरित नहीं होते। टेकिंग रिस्क, अब हमने इसके विषय में एक इंटरेक्टिव सेशन लिया था, जहां पर आप लोगों ने जो आपके जीवन में अलग अलग प्रकार के रिस्क लिए, वो आप लोग ने शेयर किए। आप लोग थे वो सेशंस में, तो एक सुंदर कोट रिसेंटली मुझे प्राप्त हुआ रिस्क के संदर्भ में, इफ यू विन व्हाइल टेकिंग रिस्क यू विल बी हैप्पी, इफ इन केस यू लूज यू विल बी वाइज। तो अब मैं ये पूछना चाहूंगा हमारे फोरम से कि ऐसी कौन सी चुनौतियां या ऐसे कौन से खतरे आपने अपने जीवन में मोल लिए होंगे, जो लेने के पश्चात आप उसमें विजयी नहीं रहे, परंतु उसके बदले आपको कुछ सीखने मिला, पराजय हुई आपकी, लेकिन वो पराजय यदि हम एक बाहरी दृष्टिकोण से उसको समझें तो हाँ उसको पराजय बोल सकते हैं, परंतु उस पराजय के वजह से आपने अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज सीखी कि किसी दूसरी फील्ड में आपको उस सीख के वजह से विजय प्राप्त हुई। कंफ्यूजिंग, इजी समझने में? तो अच्छा, यहां से शुरुआत करते हैं कि कितनों के जीवन में आपने कुछ रिस्क लिया और फेल हुए, बस वहां तक प्रश्न पूछते हैं। आपने रिस्क लिया और आप फेल हो गए, एक ही हाथ उठ रहे, बाकी सब सक्सेसफुल थे। सोच लीजिए ध्यान से, बोलिए माता जी क्या लिया था आपने? एक मिनट माइक पे बोलिए। उसको दबाइए ग्रीन लाइट आने तक।
जब मैं मेरे मास्टर्स में थी तो कॉलेज में से एक इंटर कॉलेज कंपटीशन था, तो उसके लिए सर मतलब टीचर्स ने मुझे एंड मेरे सिस्टर को, हम लोग दोनों को सिलेक्ट किया था। तो एक्चुअली कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो हमें बहुत डर लग रहा था, तो हम लोग ने स्टार्टिंग में मना किया कि हम लोग नहीं लेंगे, ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे।
किस चीज का कंपटीशन?
ये इंटर कॉलेज था, मार्केटिंग फाइनेंस एंड एक्चुअली आई कंप्लीटेड माय एमबीए तो उसके रिलेटेड ही पूरा था। तो मार्केटिंग फाइनेंस एंड एचआर हम लोग का तीनों का मिक्सचर था वो, तो हम लोग को प्रोजेक्ट बनाना था एंड ये पूरा ब्लू इसका ये करना था। तो हम लोग ने थोड़ा डर गए, हम लोग नहीं, पूरा इंटर कॉलेज इतने कॉलेजेस आएंगे, इवन मुंबई पुणे सब जगह से आ रहे थे। तो एट दैट टाइम आर टीचर्स मोटिवेटेड अस, नहीं चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम लोग जाओ तो से एटलीस्ट हमारे कॉलेज को रिप्रेजेंट करो। तो एट दैट टाइम आई वेंट, उसमें हम लोग फाइनल स्टेज तक गए थे, टॉप फाइव तक। उसके बाद ऑलमोस्ट आउट ऑफ 50 कॉलेजेस वी केम टॉप फाइव तक हम लोग आए, एंड उसके बाद फिर हम लोग फर्स्ट नहीं आ पाए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड केस में नहीं आ पाए। तो एट दैट टाइम आई फेल्ट सो बैड, ओ नो, मतलब इतना फाइनल स्टेज तक गए फिर भी नहीं, फिर माई टीचर्स मोटिवेटेड मी, नो इट्स ओके, टॉप फाइव तक तो आए वही बड़ी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इट वॉज अ बिगेस्ट रिस्क, क्योंकि अगर हम गए तो पूरे नासिक में से हम लोग के कॉलेज में से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो मुझे लगा थोड़ा सा।
ओके, नाइस टू बिगिन विथ। सबसे पहली दफा जब मैंने कुकिंग किया, मुझे लगा कुकिंग क्या है, व्हाट अ बिग डील, ऐसे मुझे लगा। और मैंने खिचड़ी बनाना उसका प्रयास किया, तो एक इलेक्ट्रिक का कॉइल हीटर और उसमें एक पतीला रखा, और फिर जो यहाँ वहाँ से अंदाजन जो देखा सुना उस हिसाब से मैंने सब कुछ डालने की कोशिश की, और मैंने फिर उसको ढक दिया। और फिर मुझे लगा कि जो मैंने देखा है कि कुछ 20-25 मिनट में खिचड़ी बन जाती है अपने आप, तो अपने आप बन जाएगी। और फिर जब मैंने सोचा कि थोड़ा हो सकता है कच्ची निकल जाए, क्योंकि नीचे की आंच जो है वो इलेक्ट्रिक की पता नहीं वो बराबर है कि नहीं, तो थोड़ा मैंने और 5-10 मिनट ज्यादा रख दिया। और फिर जब मैंने ढक्कन खोला तो उसमें से महक नहीं आ रही थी, जलने की जो भी वो बदबू जैसी आ रही थी, और इतना थिक लेयर नीचे दाल चावल का सब कुछ, उसका रंग पूरा ऐसा लग रहा था कि अफ्रीका में बन रही खिचड़ी, पूरा काला हो चुका था। तो रिस्क लिया, लेकिन उससे सीखा क्या, क्या समझ सकते हो, क्या सीखा होगा, आप क्या सीखते अगर आपके साथ ऐसा होता तो? खिचड़ी नहीं बनाना, नेक्स्ट टाइम से उसको संभालते रहो, बीच बीच में संभालते रहो उसको। तो एक छोटा सा उदाहरण मैंने अपना स्वयं का है, खिचड़ी का दिया। लेकिन हमारे जीवन में हम बड़ी बड़ी चीजें बिना संभाल कर जब करते हैं, चाहे वो संबंध हो, रिश्ते नाते हो, चाहे वो कोई हमारे जीवन का करियर हो। करियर के विषय में कुछ हुआ है किसी के साथ? बहुत, एक बहुत बड़ा रिस्क होता है ना करियर चूज करना, होता है ना 10th और 12th के बाद अब कौन से फील्ड में जाना। इंडिया में बहुत ये एक डिस्कशन का विषय रहता है, और ये डिस्कशन का विषय बचपन से चालू हो जाता है घरों के अंदर, कि मेरे ख्याल से पैदा होते ही से कि इसको कौन से फील्ड में कहां पर ये और आगे बढ़ सके, उस प्रकार से उसकी ट्रेनिंग। तो चाहे करियर हो, चाहे खिचड़ी बनाना हो, चाहे रिलेशनशिप, या कोई अगर गृहस्थ आश्रम में जा रहा है तो लाइफ पार्टनर का चॉइस, कहां रहना है, कैसे उस गृहस्थी को चलाना है, ये सब। और अक्सर हो सकता है कि कंप्लीट फेलियर ना हो, उसके अंदर थोड़ा बहुत सक्सेस, थोड़ा बहुत फेलियर, वो मिक्स मैच होता है। परंतु यदि हम जागरूक नहीं हैं और उससे सीख नहीं रहे, तो या तो हम फेलियर में, डिप्रेशन में चले जाएंगे, या फिर सक्सेस में हम घमंडी बन जाएंगे। दोनों में ड्रॉबैक्स क्या है, सक्सेस और फेलियर में अगर हम जागरूक नहीं है तो सक्सेस के वजह से घमंड आने के चांसेस हैं, और फेलियर के वजह से डिप्रेशन, दोनों ये एक्सट्रीम है। इसलिए यहां पर इस कोट में जो कहा गया है, इफ यू विन यू विल बी हैप्पी, इफ इन केस यू लूज यू विल बी वाइज। माइक, उसको दबा के रखिए ग्रीन लाइट आने तक।
अभी जो आपने बताया कि फेलियर और बाद में सक्सेस, तो 91 में मैं 8 में थी तब मेरी स्कूल चेंज हो गई थी, तो वहां पर मुझे एक्चुअली संस्कृत लेना था, पर लेट एडमिशन के कारण संस्कृत नहीं मिला, तो सिर्फ एनसीसी की सीट्स खाली थी। तो फिर मैंने एनसीसी ली, इंटरेस्ट इतना नहीं था, और एक दो महीने परेड भी नहीं जमती थी हमको। आरएसपी जो है हड़पसर के यहाँ पर, वहां पे 6 महीने के बाद राइफलिंग के लिए लेके जाते थे, वो भी नहीं जमता था। उसके बाद में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए हम लोगों को, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे जो करना था वो नहीं हो रहा है और इन सब चीजों में मुझे करना पड़ रहा है। तो सिम्बॉयसिस कॉलेज में हमको संडे के दिन जो है उनको, जो मिलिट्री के ऑफिसर्स आते थे वो वहां बुलाते थे, तो हम लोग वहां जाते थे प्रैक्टिस के लिए। तो ऐसे कम से कम ये 7-8 महीने चला। फिर मैं 92 में जब कैंप होता है एनसीसी का, 2 साल में एक बार भेजते हैं, तो ऑल ओवर पुणे में से सिर्फ 8 लड़कियों को चुना था, और उसमें मेरी परेड अच्छी रहने के कारण हमारे स्कूल से मुझे चुना गया था। तो उस समय में मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं बहुत ज्यादा मीन्स फेलियर हूँ, और बाद में वो प्रैक्टिस से 92 में बिहार कैंप गया था हमारा 15 दिन के लिए रांची, तो वहां पे मुझे ऐसे लगा कि शायद से मैंने कुछ अचीव किया है करके ऐसे।
तो आप परेड में माहिर है?
थी प्रभु जी।
लेफ्ट राइट क्या संकीर्तन। थैंक यू फॉर शेयरिंग।
हरे कृष्णा। एम MBBS होने के बाद मेरा सबसे बड़ा फेलियर मेरा शादी था, क्योंकि MBBS होने के बाद यानी एट द एज ऑफ 24 पिताजी ने मुझे पूछा कि अभी तुझे क्या करना है, तुझे आगे सीखना है क्या? मैं बोला नहीं, अभी मुझे बिजनेस में लगना है। तो बिजनेस में लगना है तो फिर अभी आगे क्या? तो मैं आई विल मैरी, क्योंकि मुझे गृहस्थ आश्रम में तो जाना ही है, तो इट इज़ बेटर, अर्लियर इज बेटर, ऐसा मुझे लगता था, अभी भी लगता है। तो तब ऐसा हुआ कि ड्यू टू दैट टाइम जो सर्कमस्टांसेस थे, तो मुझे ऐसा गाइडलाइन दिया गया या मिला कि नाउ व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स जो है, तो नाउ यू सी आउट ऑफ इस्कॉन। तो मुझे लगा अभी मुझे आयुर्वेद सीखी हुई ही लड़की चाहिए, मेरे घर में आयुर्वेद की फैक्ट्री है और मैं MBBS हूँ तो क्वालिफाइड भी हूँ, तो जिसको पहले बार पूछूंगा वो हाँ बोलेगी। मुझे 7 लड़कियों ने रिजेक्ट किया, दैट टाइम इट वॉज वेरी बिग फेल्योर फॉर मी, कि ऐसा लगने लगा था कि अरे फिर क्या। तो और रीजन्स बहुत फालतू रीजन्स थे, एक तो मैं आयुर्वेद में सीखी हुई हूँ लेकिन मैं आयुर्वेद प्रैक्टिस नहीं करूँगी, चलेगा क्या? दूसरा, इतने जल्दी शादी क्यों कर रहे हो, क्या गड़बड़ है क्या? तीसरा यानी कि आपके पेरेंट्स के साथ ही रहोगे क्या, हम सेपरेट रहेंगे? चौथा, कि मैंने प्यार से कांदा पोहा खिलाया तो खाओगे क्या? मैंने दिस इज बट उसके बाद फिर हमारी वैद्य और मेरी शादी हो गई। तो जब मैंने सब हिस्ट्री में देखा तो सबसे पहले एक्चुअली प्रपोजल्स की मैंने जो लिस्ट बनाई थी उसमें सबसे पहले उसका प्रपोजल था, लेकिन बिकॉज ऑफ हाइट डिफरेंस हमने कॉन्टेक्ट ही नहीं किया था उनको मैंने वो फैमिली को, बाद में वो फैमिली हमारे। तो इससे मैंने दिस वॉज एट दैट टाइम मुझे बहुत ज़्यादा मैंने ऐसा लग रहा था कि एक्चुअली क्या है। लेकिन जब शादी होने के बाद जब अभी आज के स्टेज में मैं हूँ तो अभी लगता है कि, लेकिन उस समय मेरा पूरा विश्वास कृष्णा के ऊपर था, यानी मैंने ये 7 लोगों को किसी को उनके दुर्गुण या उनके कुछ प्रॉब्लम्स के कारण मैंने ना नहीं बोला था, लेट कृष्णा डिसाइड माई मैरिज ऐसा करके। तो मेरे पिताजी और माँ भी डांटते थे कि तुझे कुछ समझता नहीं है, मतलब लिटरली नहीं समझता है। तो लेकिन बट नाउ देखा जाए तो इफ वी समटाइम्स हमारे कुछ एक्सपेक्टेशंस न रखते हुए कृष्णा को प्लान करने के लिए दिया और जो कुछ भी चल रहा है सिर्फ एक साक्षी भाव से वो मार्ग पे चले, ऑल्दो लगता है कि हर पैर कीचड़ में ही गिर रहा है, पूरा धोती खराब हो रहा है, फिर भी चलते रहे तो भगवान बराबर एक अच्छी डेस्टिनेशन तक हमें लेके जाते हैं। वो इंसिडेंट से मुझे इतना दृढ़ विश्वास हो गया है कि उसके बाद मैं बहुत कम बार मेरे खुद के लिए प्लानिंग करता हूँ, भक्ति के लिए करता हूँ या भक्ति प्रचार, लेकिन अभी मुझे क्या होना है, मुझे क्या बनना है, आई थिंक कृष्णा प्लान्स बेटर फॉर मी रादर देन आई एम प्लानिंग फॉर माई सेल्फ।
तो प्रेम से पोहा मिल रहा है कि नहीं?
बटाटा पोहा मिल रहा है।
एक्चुअली हाँ, हम अगर श्रीमद् भागवत में एग्जाम्पल देखें, श्रीमद् भागवत में ठीक है, एक आपको आपके सामने जनरल नॉलेज क्विज भागवत का कि कौन से ऐसे दंपति है जिसके अंदर आप देखते हो कि बहुत बड़ा रिस्क लिया किसी एक साइड ने मैच मेकिंग के समय, कर्दम मुनि और देवहूति। तो आप देखो देवहूति वो ऐसी राजघराने की राजकुमारी और कर्दम मुनि उनका कोई ठिकाना किसी को पता भी नहीं था, स्वयं भुव मनु जो देवहूति के पिता वो जंगल में उनको ढूंढना पड़ा कर्दम मुनि कहां पर है, और ढूंढकर ऐसी अवस्था में कर्दम मुनि कोई रहने का ठिकाना नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई घर नहीं, जंगल में रहने वाले कर्दम मुनि। तो रिस्क लिया स्वयंभुव मनु ने अपनी राजकुमारी बेटी को इनसे विवाह कराने का, और न केवल पिता बल्कि बेटी देवहूति, मानना चाहिए देवहूति को भी कि अपने पिता की बात मान ली, और कुछ पता नहीं कि कहाँ पर, और ये भी ऐसा नहीं कि स्वयंभू मनु ने, कई बार ऐसा होता ना कि अरे अगर मेरी बेटी जा रही है ऐसे किसी ऋषि मुनि के साथ विवाह करके जंगलों में रहने के लिए, तो कम से कम मैं अपनी तरफ से सब मेरी बेटी के लिए ठीक से सहूलियत कर कर रखूं, तो वो भी नहीं किया स्वयंभू मनु ने, वो सब कुछ नहीं किया, पूरा एज इट इज जैसे कर्दम मुनि रखना चाहते थे देवहूति को उसमें स्वीकृति दे दी। तो ये बहुत ही जानने लायक उदाहरण है कि कैसे हम कौन से मुद्दों पर गौर करते हुए हमको रिस्क लेना चाहिए हमारी जिंदगी में, और इसलिए उन्होंने वो जो रिस्क लिया, दोनों ने, बेटी ने और पिताजी ने जो रिस्क लिया, आउटकम क्या निकले, कौन, साक्षात भगवान कपिल मुनि। और ऐसे अगर हम जितने भगवान के जो नित्य पार्षद हैं, जो माता पिता बने, उनके जीवन को देखो, तो उन्होंने सबने, वसुदेव, देवकी, नंद महाराज, यशोदा मई, सबने बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए और तब जाकर उनको भगवत प्राप्ति हुई। तो मेन मुद्दा यहां पर ये है। और कुछ, हाँ यस मत, पीछे माइक पहुंचाना होगा।
हरे कृष्णा। एक्चुअली अभी रिसेंटली थोड़े दिन, चार पांच महीने पहले कॉलेज में, मतलब एक इंटर कॉलेज कंपटीशन ही था, तो एक्चुअली इट वाज अ स्ट्रीट प्लेट था, और स्ट्रीट प्लेट का टॉपिक ये था कि हाउ टेक्नोलॉजी अफेक्ट्स योर हेल्थ। तो और उसके साथ और भी क्राइटेरियाज थे कि स्ट्रीट प्ले में पार्टिसिपेट करना है तो पोस्टर भी बनाना पड़ेगा एंड ग्रुप डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो एक्चुअली उसके लिए ग्रुप लगता है, तो एंड मुझे पता चला एंड मैंने नाम दे दिया, कुछ सोचा नहीं, ऐसे ही मैंने नाम दे दिया, मुझे भी पता नहीं मैंने कैसे दिया, लेकिन नाम दे दिया। फिर सबको बताया कि ऐसे ऐसे है तो हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। फिर सब देख रहे हैं मेरे पास एंड सब शॉक एकदम, ऐसे कि ऐसे कैसे नाम दिया तूने। फिर उसके बाद हमने ट्राई किया, थोड़ा सा एक स्ट्रीट प्ले बनाया। फिर कॉलेज लेवल में एक्चुअली स्क्रीनिंग होने वाला था, तो स्क्रीनिंग भी हुई एंड डिपार्टमेंट से पहले हमें बोले कि ओके तुम लोग वेट करना थोड़ी देर। फिर हम लोग को लगा नहीं, कोई होप्स नहीं थे कि हम लोग सेलेक्ट हो गए, लेकिन लेटर ऑन उन्होंने हमें बताया कि ये पॉइंट्स ऐड करके प्लीज़ तुम लोग हमारे कॉलेज को रिप्रेजेंट करो। तो फिर इसलिए मतलब ऐसे लगा कि कुछ रिस्क लेके पहले फेलियर मिला एंड देन कुछ सक्सेस मिला। एंड
हरे कृष्ण, हमारे स्कूल में याद है पहली दफा जब डिबेट कंपटीशन के लिए हमारे इंग्लिश टीचर ने हमारी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया, तो बहुत ही कॉमन उस समय का टॉपिक टीवी बून और कर्स। आजकल पता नहीं ये टॉपिक होगा कि भी नहीं है क्या, आजकल भी है, तो वो टॉपिक था और उसमें मुझे चूज किया था स्पीक अगेंस्ट, टीवी इज अ कर्स उस हिसाब से बोलना है। और फिर दो लोग, हम लोग दो यहां पर, नहीं हम लोग चार थे और वहां पर चार, तो डिबेट कंपटीशन आप जानते हैं ना कि एक एक कर कर वो आएंगे प्रेजेंट करेंगे। तो हुआ क्या कि हमारे साइड के दो नहीं आए, तो हम लोग दोनों ही थे, डिबेट चालू हो गया और वो दो नहीं आए, और फिर जो हमारे इंग्लिश मैम थे वो आके हमको पीछे मुझे बोलते हैं कि दो लोग नहीं आए, आपको कवर अप करना है अभी उनके लिए। अभी मैंने जो भी वो स्पीच था, मैंने पिताजी को टॉपिक दे दिया था, पिताजी ने पूरा स्पीच लिख लिया, मैंने उसको क्या बोलते हैं उसको, पोपट की तरह पूरा, कुछ मुझे पता नहीं था कि उसके अंदर वो क्या पॉइंट्स पे एम्फेसिस करना है, पूरा मैंने उसको मगअप कर लिया था। और जितना मेरे को टाइम दिया गया था उसके अनुसार पिताजी ने वो पूरा स्क्रिप्ट लिखा। अब यहाँ पर हमारी मैम आके बोलती कि कवर अप करना है, तो फिर अभी मैंने कहा कि मेरा तो इतना ही स्क्रिप्ट है, इसको आधा आधा करके बोलूं? बोला नहीं नहीं आधा आधा नहीं, बाकी जो उनके पॉइंट्स होंगे उनको सुन के फिर बोलना है। तो वो मुझे याद है 8th स्टैंडर्ड में सबसे पहली दफा स्पॉन्टेनियस एक्सटेम्पोर क्लास देना पड़ा वो डिबेट कॉम्पिटिशन में, और उसके बाद वो हमारे इंग्लिश मैम, हम लोग जीते उसके अंदर, लेकिन उस समय जो बोलते समय हृदय के अंदर ऐसा लग रहा था कि सारी आर्टरीज क्लॉग्ड हो गई हैं और हार्ट अटैक अभी आने वाला है, लेकिन हमारे इंग्लिश टीचर वो मिसेस जोशी वो आकर कहीं यू शुड वर्क अपॉन योर स्पीकिंग स्किल्स, वन डे यू माइट बिकम अ गुड स्पीकर। और फिर रिसेंटली कुछ वर्षों पहले वो अभी न्यू बॉम्बे में रहती हैं, तो उनसे मिलने गया था मैं, हमारे कुछ फ्रेंड्स लेकर गए थे, अभी काफ़ी ओल्ड हो गई हूँ, तो उनको याद था वो 8th स्टैंडर्ड का डिबेट कॉम्पिटिशन। तो वो मेरे को पूछी, उनको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन से वेशभूषा में मैं आया हूँ, लेकिन जब इंट्रोड्यूस मुझे इंट्रोडक्शन मैं अपना दिया तो उनको याद आया, तो वो पूछा आई हैड टोल्ड यू इन दैट डिबेट कॉम्पिटिशन दैट यू शुड वर्क अपॉन योर स्पीकिंग स्किल्स, डिड यू डू दैट? मैंने कहा सम व्हाट इन सम वे, नो यू शुड वर्क अपॉन दैट स्पीकिंग स्किल्स नाउ इफ इन केस यू हैव नॉट डन। तो एक छोटे से उस उम्र की एक बहुत बड़ी रिस्क थी कि कोई आया नहीं और उसको स्टेज पर पूरे स्कूल के सामने आपको इंग्लिश में लेक्चर देना है स्पॉन्टेनियस, सारे स्क्रिप्ट साइड में, और वो भी जो प्रतिद्वंद्वी हैं आपके उनके पॉइंट्स को लेते हुए फिर आपको प्रेजेंट करना है। तो कई बार मुझे याद है कि वो स्पीच से पहले पूरी हनुमान चालीसा तो नहीं, लेकिन हनुमान जी को बहुत याद किया था मैंने। तो हमारा मिशन स्टेटमेंट हमने पिछली बार लिया था, और किसी को कुछ शेयर करना? इफ यू वांट समथिंग विच यू नेवर हैड बिफोर देन डू समथिंग विच यू हैव नेवर डन बिफोर। तो हमने वाव फैक्टर के ऊपर काफी चर्चा की थी, और वाव फैक्टर का अर्थ है कि कृष्ण भक्ति में चाहे कितनी भी इनसिग्निफिकेंट से इनसिग्निफिकेंट भगवान के लिए हम कुछ करें वस्तु या कोई क्रिया, वो वाव फैक्टर में ही आ जाता है। यहां तक कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कोई यदि भगवान को दंडवत भी कर रहा है तो कितने जन्मों के बाद ये अवसर उस जीव को मिलता है भगवान को दंडवत करने का, वो अपने आप में एक वाव फैक्टर है। अभी तो हम कितने दफा, कुछ याद भी नहीं होगा कि कितनी दफा हमने दंडवत भगवान को भक्तों को कर दिया, बोल दिया, लिख दिया, लेकिन वो एक अवसर मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही दुर्लभ माना गया। तो अब आज हम एक अलग विषय पर चर्चा करेंगे, द टू बैकबोन्स ऑफ लाइफ। और ये जो दो बैकबोन्स हैं जो कि रोजमर्रा की हमारी जिंदगी में हम हर दिन ये द्वंद्वों के बीच में अपना जीवन जीते रहते हैं, तो इस्कॉन में भक्ति में आने से पहले जो हमने हमारे जीवन की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन का अर्थ है रीढ़ की हड्डी, जो हमने हमारे जीवन की रीढ़ की हड्डी बना रखी थी वो यहां पर जिसको बोलते हैं द विश बोन। विश बोन का अर्थ है, कौन समझे विश बोन का अर्थ क्या है? क्या समझ में आया आपको? हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं। नहीं अरे एक्सपेक्टेशंस ओके विशबोन का अर्थ है मुझे क्या चाहिए, भौतिक रूप से मुझे क्या चाहिए, और विल बोन है मुझे क्या प्राप्त होना चाहिए, व्हाट आई नीड एंड व्हाट आई वांट। तो दोनों में अंतर अब आपको समझ में आएगा। विश बोन इज कनेक्टेड टू सेंसेस माइंड एंड सोसाइटी, कि मेरी इंद्रियां, मेरा मन और ये जो समाज जो कि एक्सटेंडेड मन और इंद्रियां है हमारे, भौतिक समाज में बोल रहा हूं। तो भौतिक समाज क्या है, हमारा मन और हमारी इंद्रियां का एक्सटेंशन है बस। तो वो हमसे एक विश लिस्ट बनाते है ना, परिवार में विश लिस्ट बन जाता है कि क्या क्या चाहिए। और बहुत स्टैंडर्ड सब परिवारों में आप देखो, जिनके घर में कृष्ण भावनामृत केंद्र नहीं है तो सब कुछ बहुत ही स्टैंडर्ड पेटेंट होता है। क्या? करियर, परिवार, घर, गाड़ी, बंगला इत्यादि सब बहुत कॉमन होता है, नाम, शोहरत, बस। तो वो है विश लिस्ट, और उसे पूरा कर, उसको टिक मार्क करते 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 कितने जन्म बीत जाते हैं हमारे, उस विश लिस्ट को टिक मार्क करते करते कितने जन्म बीत जाते हैं। और होता क्या है कि फिर जब दूसरी योनि में आत्मा चला जाता है, तो यदि कोई पशु की योनि में चला गया, किसी पक्षी की योनि में चला गया, तो वहां की जो विश लिस्ट है उसका खाली वो कैरेक्टर्स बदलते हैं, उसके प्रिंसिपल्स वही रहते हैं। जैसे मान लो कि कोई चिड़िया बन गया, आत्मा अब चिड़िया बन गया है, तो वो जब मनुष्य बना हुआ था आत्मा, तो विश लिस्ट में एक आइटम उसका रहा होगा कि मुझे कोई अच्छा कंट्री साइड में बंगला चाहिए, फार्म हाउस चाहिए मेरे खुद के ऐशोआराम के लिए। अब वही आत्मा जब पक्षी बन जाता है तो बंगला तो नहीं मिलेगा, तो चलो बंगले के अंदर घोंसला बना लो, कहीं किसी और के बंगले में घोंसला या किसी पेड़ के ऊपर घोंसला। तो प्रिंसिपल वही है, कुछ उसके स्वरूप बदलते हैं। अब गुरु साधु शास्त्र जब वो हमारे जीवन में आ जाते हैं तो वो हमें क्या बताते हैं कि व्हाट वी नीड टू कम आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, और उसको कहते हैं द विल लिस्ट, द विल बोन। तो ये है हमारे रीढ़ की हड्डी, इसलिए इसको बैकबोन नाम दिया है मैंने, कि जब तक पूरा ढांचा हमारा रीढ़ की हड्डी के ऊपर आधारित है, तो हमारी साधना भक्ति में जब तक हम हमारी रीढ़ की हड्डी को सही नहीं करते, तब तक उस ढांचे के ऊपर हम कितनी भी कलाकारी कर लें, वो टिकने नहीं वाला है ढांचा। पता है कि जब रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होता है तो व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाता, बैठ नहीं पाता, चल नहीं पाता, चाहे बाहर से सब कुछ ठीक दिख रहा हो, एक्सरे रिपोर्ट में दिख जाता है कि कहां कहां इसकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है। तो वैसे ही जब हम कृष्ण भक्ति में लगते हैं तो कृष्ण भक्ति में क्या हमारी लिस्ट में परिवर्तन आया है क्या? सबसे पहला प्रश्न क्या, क्या हमारी लिस्ट में परिवर्तन आया है क्या? तो अब मैं पूछना चाहूंगा कि कौन कौन सा परिवर्तन उस लिस्ट में, इस्कॉन में या कृष्ण भक्ति में आने के बाद आपके जीवन में आपने देखा, या पहले की लिस्ट भी बता सकते हैं, पहले की लिस्ट के कंपैरिजन में अभी की जो लिस्ट है गुरु साधु शास्त्र के आधार पर, कि रीढ़ की हड्डी अब किस दिशा में बदली है। जैसे हमारे आनंद वृंदावन प्रभु हैं बंबई में, तो आनंद वृंदावन प्रभु वो बताया करते थे कि कैसे इस्कॉन में आने से पहले जो उनकी काबिलियत स्टॉक मार्केट में, कि वो करोड़ों रुपए एक महीने में करोड़ों रुपए कमा सकते थे, ऐसा उनका दिमाग और ऐसे क्वालिफिकेशंस उनको प्राप्त हो चुकी थी। लेकिन इस्कॉन में आने के बाद, और यदि वो चाहते तो वो बहुत ही ऐशो आराम का आलिशान जीवन बंबई में जी सकते थे, लेकिन गुरु साधु शास्त्र के निर्देशन में अपना जीवन जीने के बाद उनके जो लिस्ट पूरी बदल गई। बोरीविली में एक फ्लैट में और रोज स्टॉक मार्केट ट्रेन से आना जाना, उनके बस में वो कह रहे थे कि वो साउथ बॉम्बे में जहां पर स्टॉक मार्केट है वहां पर मकान लेकर कोई ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम नहीं, बॉम्बे के अंदर ट्रैवलिंग बहुत बड़ा इश्यू है। आलिशान उनके खुद के परिवार में इतना उनको जो इनहेरिटेंस मिल रहा था करोड़ों में, वो सब भी उन्होंने दे दिया अपने सिस्टर्स को और बाकी उनके मदर को इत्यादि को। तो उन्होंने ये सब कुछ बदलाव अपने जीवन में, और बाहर की दृष्टिकोण से लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे और बोलते थे, जैसे वो एक किस्सा बता रहे थे कि एक बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट के अंदर लूप होल उन्होंने खोज निकाला था, और वो ऐसा लूप होल था कि उन्होंने जब उनके कलीग को उस लूप होल के बारे में बताया तो उनका जो कलीग है वो आश्चर्यचकित हो गया। आपने हर्षद मेहता का वो जो कांड सुना होगा, तो हर्षद मेहता के कांड से भी बहुत बड़ा कांड, उस प्रकार का ये लूप होल इन्होंने निकाल लिया था उसके अंदर, कि बहुत उस जमाने में करोड़ों का स्कैम, करोड़ों इनको मिल जाते। तो इन्होंने मंदिर में भक्ति रसामृत महाराज, इनके काउंसलर, इनके शिक्षा गुरु, उस समय देवामृत प्रभु थे वो, तो उनको पूछा कि क्या करूं मैं, सामने ये प्रलोभन, जैसे संडे को हमने वो ब्लैक बटन का वीडियो दिखाया ना, है ना, $10 million या फिर ब्लैक बटन दबाओ, एक व्यक्ति मर जाएगा, $10 million आपके। तो ऐसे प्रलोभन सामने, तो उनको उनके शिक्षा गुरु ने कह दिया, नहीं, आप के अंदर का जो वजूद है, वजूद जानते हैं आप लोग, कॉन्शियंस, आपके अंदर का जो कॉन्शियंस है वो आपको जीने नहीं देगा, वो पचाएगा नहीं आपका जो भी ये लेंगे आप। तो वो उससे हट गए, और इनका जो कलीग था ये बोल रहा था, तुम बहुत बड़े पागल हो, तुमने तो बताया मुझे इसके बारे में और तुम अब पीछे हट रहे हो। उन्होंने कहा, नहीं, मेरे शिक्षा गुरु ने कहा है इसके अंदर नहीं पढ़ना है। वो व्यक्ति, उसने सोचा अब तो पूरा शेयर मेरा है, उसको तो और भी विन विन सिचुएशन लगा कि इसने बता तो दिया और ये खुद हट रहा है तो पूरा शेयर मेरा होगा। वो व्यक्ति आज जेल में, और उस व्यक्ति ने, उसका साक्षात्कार यही रहा कि वो क्या नाम, अशोक पारेख, अशोक पारेख बुद्धिमान निकला कि सही समय पर उसने अपने आप को इजेक्ट कर लिया, वहां से बाहर निकल गया। तो भगवान, यदि हम प्रामाणिक हैं तो भगवान हमको सही समय पर सही बुद्धि देते हैं चयन करने की, कि मैं क्या चूज करूं, कौन से लिस्ट से, कौन से आइटम को मैं टिक मार्क करूं, कौन से आइटम को क्रॉस करूं सही समय पर। और आप देखो कि जैसे प्रभुपाद का जीवन, प्रभुपाद का गृहस्थ जीवन चल रहा था, प्रभुपाद का एक्सपेक्टेशन ये था कि मैं अपने गृहस्थ जीवन में जैसे कि एक गृहस्थी कृष्ण भावना भावित रहकर गृहस्थ जीवन का उत्तरदायित्व तो निभाता है, तो उन्होंने पूरा प्रयास किया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनको चूज करना पड़ा, जैसे कि उनकी पत्नी ने चूज कर लिया चाय के बिस्किट या प्रभुपाद उनमें से, तो उसी समय प्रभुपाद ने भी वो अपने लिस्ट में से किसको टिक मार्क किया किसको क्रॉस किया वो जानने लायक है। और देखिए कि वो जो टर्निंग पॉइंट प्रभुपाद के जीवन में, आज उसका परिणाम हम देख रहे हैं। तो उस समय एक केवल दंपति, एक पति पत्नी के बीच में कितने बार ऐसे वार्तालाप होते हैं, छोटे मोटे झगड़े मतभेद कितनी बार होते हैं। लेकिन उसमें प्रभुपाद ने जो देखा कि भगवान का हाथ, कि भगवान मुझे यहां पर क्या शिक्षा या प्रेरणा दे रहे हैं, वो देख पाना वो गुरु साधु शास्त्र या हमारी जो प्रामाणिकता है उसके वजह से ही प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए ये जो आज स्लाइड पर हम चर्चा कर रहे हैं ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ये नहीं समझना चाहिए कि हाँ अभी मैं इतने साल भक्ति कर रहा हूं तो अभी मुझे ये सब लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है। नहीं, बहुत सालों के बाद भी हमारी पुरानी लिस्ट होता है ना, एक एक पेपर में हमारी पीछे पुरानी लिस्ट होती है, वही पेपर में दूसरी तरफ हम गुरु साधु शास्त्र के आधार पर लिस्ट बनाते हैं। और बहुत बार हम पलटकर पुरानी लिस्ट को भी देखते रहते हैं, और फिर कई बार हम लोग जब थोड़ा शास्त्र पढ़ लेते हैं तो पुरानी लिस्ट को कैसे जस्टिफाई करें नई लिस्ट में इंक्लूड करना, युक्त वैराग्य के रूप में, तो हम बहुत माहिर भी बन जाते हैं। और जैसे कहते हैं ना, देर आर एवरी श्लोक फॉर एवरी फोक इन दी स्क्रिप्चर्स, कि यदि हमें अपने आप को चीट करना है तो भगवान जो कहते हैं अपोहनम च, कि हमको हमारी स्मृति भ्रमित भी भगवान करा सकते हैं यदि हम अपने आप को चीट करना चाहें तो, बिकॉज कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट चीटर ऑल्सो एज इज मेंशन इन दी भगवद गीता। तो हमको बहुत सावधान रहना चाहिए कि ये जो लिस्ट के अंदर मैं किस पे आधारित लिस्ट बना रहा हूं। भक्ति के भी कार्य यदि मैं इंद्रिय मन और भौतिक समाज के आधार पर वो लिस्ट बना रहा हूं और सोच रहा हूं कि मैं भक्ति में लगा हुआ हूं, तो समझना चाहिए कि हमारी रीढ़ की हड्डी गलत है वो। इसलिए भक्ति के भी कार्य हमारे गुरु साधु शास्त्र के आधार पर होने चाहिए, नहीं तो हमारी जो आध्यात्मिक गाड़ी है वो बहुत आगे तक नहीं पहुंच पाएगी, या चलती रहेगी रफ्तार में लेकिन गलत दिशा में, गलत पटरी में। किसी का कोई साक्षात्कार समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा है? दोनों बैकबोन्स, रीढ़ की हड्डी। ओके, अब विश वर्सेस विल। तो इसमें हम ये देखेंगे कि कई बार हम जब भगवान श्री कृष्ण से कुछ ऐसी ऐसी चीजें मांगते हैं, जैसे यहां पर सबसे पहली चीज, आई आस्क्ड कृष्णा फॉर स्ट्रेंथ। तो हम भगवान से हां सूक्ष्म चीजें मांग रहे हैं, ऐसे हम काबिलियत मांग रहे हैं जिसके द्वारा हम अपने आप को संभाल सकें और भगवान की सेवा ठीक से कर सकें। लेकिन होता क्या है कि हम मांगते कुछ और हैं और भगवान देते कुछ और हैं। अक्सर भक्तों के जीवन में जब वो दुविधा में पड़ जाते हैं तो उनकी दुविधा क्या होती है अक्सर, कि भाई मैं तो कुछ और समझकर भगवान की भक्ति शुरू किया था और यहां पर तो कुछ और मिल रहा है मुझे, मैं तो भगवान से नियमित रूप से कुछ और मांग रहा हूं और ये भगवान पता नहीं मुझे क्या दिए जा रहे हैं। और कई बार ठीक विपरीत, जो मैंने मांगा है उसका ठीक विपरीत दे रहे हैं या विपरीत मेरे साथ हो रहा है, तो उस समय क्या होता है कि हमारी जो श्रद्धा, उसको हमारे आचार्य कहते हैं कोमल श्रद्धा। यहां पर कोमल शब्द कोई पॉजिटिवली यूज नहीं किया गया, कोमल श्रद्धा मतलब आपको नहीं लगना चाहिए कि हाँ कितनी है ना। तो कई बार अगर आपको पूछे कि कोमल श्रद्धा का ऑपोजिट क्या होगा, कठोर श्रद्धा नहीं, कोमल श्रद्धा मतलब वीक, कमजोर, कमजोर श्रद्धा। तो फिर श्रद्धा हमारी कमजोर होने लगती है, हम भक्ति में डगमगाने लगते हैं। तो इसलिए यहां पर हम शुरुआत कर रहे हैं, आई आस्क कृष्णा फॉर स्ट्रेंथ एंड कृष्णा गेव मी डिफिकल्टीज, इंस्टेड ऑफ मेकिंग मी स्ट्रांग कृष्णा गेव मी डिफिकल्टीज एंड थ्रू डिफिकल्टीज मेड मी स्ट्रांग। तो होता क्या है कि हम मांगते हैं कि भगवान मुझे आप थोड़ा सशक्त बनाओ, और उसके बीच में जो डिफिकल्टी है उसको हम क्रॉस मार्क करना चाहते हैं कि नहीं, थोड़ा उसको ओवरलुक करते हुए भगवान बनाना मुझे, उसके थ्रू नहीं जाना चाहिए जो मेरी यात्रा है, और डिफिकल्टीज के थ्रू नहीं जानी चाहिए। तो कितनों के जीवन में ये हुआ है कि यू asked for strength, Krishna gave you difficulty and that made you even more stronger than if Krishna would have given you strength without difficulties. Of course Krishna never does that, kabhi karte nahi bhagwan, lekin ki aapke jeevan mein kuch aisi ghatnaen ya aisa prasang aaya hai jab pareshaniyon ne aapko पहले से ज्यादा शक्तिशाली बनाया। परेशानी आई, सबके जीवन में हा? तो क्या हुआ फिर परेशानी आने का? मैं यहां पर भक्ति में आने के बाद का पूछना चाह रहा हूं कि भक्ति में आने के बाद, क्योंकि भक्ति में आने से पहले तो हम लोग फिर उसकी तो कोई गिनती नहीं है, हमारे जो कर्म, इतने जन्मों के जो कर्म हमको अलग अलग तरीके से जो सता रहे थे। लेकिन प्रश्न भक्तों का क्या होता है कि अरे अभी तो मैं दीक्षित, अभी तो मैं सोला माला, अभी तो मैं ये वो फलान ढमकान क्या पता नहीं भक्ति में कर रहा हूं, उसके बावजूद कईयों का प्रश्न होता है ये हमारे इस्कॉन में इतने लोगों को कैंसर क्यों होता है, इस्कॉन में कितने बड़े बड़े भक्ति तीर्थ महाराज इत्यादि, कितने हमारे प्रभुपाद के डिसाइपल्स जिन्होंने शरीर छोड़ा कैंसर के वजह से, क्यों ये परेशानियां भक्तों को, शारीरिक रूप की परेशानियां क्यों भक्तों को इतनी भुगतनी पड़ती है? जैसे यदि हम प्रभुपाद का उदाहरण लें कि लीलामृत, लीलामृत पुस्तक को कभी हाथ में लिया आप लोगों ने? इस्कॉन की सबसे मोटी पुस्तक कौन सी? प्रभुपाद लीलामृत। तो वो इतने पन्ने, इतने चैप्टर्स उसके अंदर है क्या? सारे स्ट्रगल्स श्रील प्रभुपाद के, परेशानी पर परेशानी, कठिनाई पर कठिनाई। और ये नहीं समझना चाहिए कि अभी इस्कॉन जो इतना फेमस वर्ल्ड वाइड हो चुका है कि अभी परेशानी नहीं है, अभी कठिनाई नहीं है। नहीं, जहां पर भी इस्कॉन अपना केंद्र खोलने गया है, वहां पर कोई ना कोई कठिनाई परेशानी आती है। एक बार मुझे याद है अपना राधा गोपीनाथ मंदिर, राधानाथ महाराज वहां पर जप कर रहे थे, एक वहां पर गोविंद भाई, अभी तो नहीं है वो, एक गोविंद भाई रहता था पीछे, गुजराती था वो गालियों पे गालियां दिया जाता था हर समय मंदिर के भक्तों को, चिल्ला उसका वो, तो आवाज भी बहुत एम्पलीफाइड आवाज था उसका, बहुत गालियां देता था, और बहुत से नेबर्स ऐसे वो उसके ही तरह तरीके के थे, ये थोड़ा ज्यादा बातूनी था, बोलने में ज्यादा आवाज से बोलता था। तो एक बार महाराज नीचे वो मार्बल के ऊपर ऐसे घूम रहे थे, तो आया चिल्लाने शुरू कर दिया, क्या ये आपका, ये कीर्तन 5 बजे शुरू हो जाता है, शंख बजाते हो, नाचते हो, वो सब बजा बजा के ढोल वगैरह, नींद खराब करते हो आप लोग हमारे, इंग्लिश में बोले जा रहा था महाराज को, व्हाट इज दिस ऑल, यू आर क्रिएटिंग न्यूसेंस ओवर हियर, अरे जीना हराम कर दिया ये। और महाराज, हरे कृष्ण, आई एम सॉरी, वी आर सॉरी, हरे कृष्ण, आई विल प्रे फॉर यू। तो वो तो यही बोल रहा था कि यू स्टॉप प्रेइंग, इतना जो आप लोग सुबह 5 बजे से प्रार्थना शुरू कर देते, बंद करो उसको। तो वो सब जो भी खरी खोटी सुनाकर चला गया। उसके बाद में महाराज, मैं भी वहां पर था, तो मैं पूछा, महाराज हाउ डू यू हैंडल, महाराज बोले दिस इज इन परंपरा। मैं बोला व्हाट डू यू मीन महाराज परंपरा, बोले व्हेन चैतन्य महाप्रभु यूज टू डू हरिनाम संकीर्तन एट शिवास ठाकुर हाउस, व्हाट वुड हैपन, ऑल नेबर्स वुड कम एंड कंप्लेंट, श्रीधर कोलवेज व्हेन ही वुड डू कीर्तन नेबर्स वुड कंप्लेंट, सो वी आर इन बोनोफाइड संप्रदाय, इफ दीज नेबर्स डोंट कम एंड कंप्लेन वी शुड डाउट वेदर वी आर फॉलोइंग द प्रॉपर बोनोफाइड हरिनाम संकीर्तन ऑफ पंचतत्व, कि पंचतत्व जब हरिनाम संकीर्तन करते थे तो सब लोग उसका विरोध करते थे। तो हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद और बड़े बड़े जो प्रचारक, उनके जीवन में जब भी अभी भी इस्कॉन का केंद्र कहीं पर भी, चाहे जितने भी आपके गवर्नमेंट के परमिशंस हो, आपके वो म्यूनसिपालिटी के परमिशंस हो, सब कुछ हो, यहां पर हम देखते हैं, चाहे कितना भी हो, भगवान वो एक एलिमेंट रखते हैं जानबूझ के, और अगर वो एलिमेंट नहीं रखे भगवान, तो हम लोग तो अपनी रजाई से कभी बाहर आएंगे ही नहीं। मतलब हमारी जो कंफर्ट जोन है, हमारे कंफर्ट जोन से आकर कभी हम सशक्त बनेंगे नहीं। इसलिए हमको ये समझ लेना चाहिए, आस्क टू बिकम स्ट्रांग, नॉट इन आर टर्म्स, कृष्णास टर्म्स। स्ट्रेंथ मांगना है हमको भगवान से, हाँ भगवान, लेकिन भगवान आपकी तरीके से आप मुझे शक्तिशाली बनाइए, भक्ति के अंदर स्ट्रांग बनाइए, ना कि हम हमारा लिस्ट भगवान को दें कि इसके अनुसार। गो अहेड, किसी को कुछ है शेयर करने के लिए? नेक्स्ट, आई आस्क्ड कृष्णा फॉर विजडम। इंस्टेड कृष्णा गेव मी प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। मैथमेटिक्स हम सब ने, हमारे स्कूल कॉलेज में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहा, क्या बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं, प्रॉब्लम बोलते हैं ना, हाउ मेनी प्रॉब्लम्स, और हाउ द टू द एक्सटेंट यू कैन सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन मिनिमम नंबर ऑफ टाइम, मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, यू आर कंसिडर्ड टू बी इंटेलिजेंट, जितनी जल्दी। तो वो जो एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कैपेसिटी हमारी बढ़ती है, जैसे कि बचपन में तो खाली अर्थमेटिक, उसके अंदर खाली एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन सब ये सब ही सिखाया जाता है, उसके बाद में फिर और कॉम्प्लेक्स यू नो ट्रिग्नोमेट्री फिर ज्योमेट्री और फिर मैथमेटिक्स कैलकुलस इत्यादि और टफ होते जाते हैं, विच मीन्स प्रॉब्लम और टफ होते जा रहे हैं और टफ होते जा रहे हैं, और जितना प्रॉब्लम टफ हो रहा है उतना एक्सपेक्टेशंस क्या है कि हमारा विजडम बढ़ रहा है। तो यदि हम ये प्रश्न पूछें कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो मैथमेटिक्स में तो क्या एक्सपेक्ट करोगे, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर किस प्रकार के प्रॉब्लम्स होंगे, खाली एडिशन सब्ट्रैक्शन रहेगा, एक्सपेक्ट करोगे ना कि भाई पोस्ट ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स है तो उस लेवल के प्रॉब्लम्स होंगे। तो इसलिए जब हम भक्ति में लगते हैं तो भक्ति में जो भक्ति के प्रॉब्लम्स हैं वो ऐसे हैं कि कभी हमने बाहर इसके विषय में कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे ऐसे भी प्रॉब्लम्स और मेरे ही प्रॉब्लम्स, ऐसे नहीं कि कहीं बाहर से कोई डालकर चला गया है, नहीं मेरे ही अंदर से प्रॉब्लम्स ये बाहर आ रहे हैं, ये कभी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। बाहर वाले उनको कई बार लगता है कि ये आप लोग इस्कॉन जब से चालू हुआ है रोज आपके लेक्चर सब सेंटर में होते हैं, इतना क्या है बोलना सुनने के लिए आप लोगों के पास, इतना क्या है। सोचो जब से इस्कॉन की स्थापना हुई है जितने इस्कॉन के सेंटर हैं रोज भागवतम क्लास, कई टेंपल में तो इवनिंग भगवत गीता क्लास भी, यहां पर ही देख लो जब से अपना मंदिर यहां पर कितने अलग अलग प्रकार के हमारे प्रोग्राम सेमिनार लेक्चर्स, ये फेस्टिवल लेक्चर वो सेमिनार वर्कशॉप, ये फोरम वो फोरम, चेतना प्रेरणा बाल संडे स्कूल जागृति मंथन क्या कुछ नहीं। तो लोगों को कई बार लगता है कि आप लोग क्या बोलते क्या हो इतना, और इतना क्या डिस्कशन आप लोगों का होता रहता, क्योंकि कलयुग में जो कलयुग मूर्तिमान कलयुग उसके जो दोष हैं उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो समुद्र के समान बताया गया है, दोष निधि। तो सोचिए वो उसको सॉल्व करने के लिए हमको कितना एक साथ आकर ये सब अलग अलग प्रकार के जो फोरम्स हैं हमारे सिस्टम्स हैं उसके अंदर हम लोग कर क्या रहे हैं, यही सब कर रहे हैं। और ये प्रॉब्लम्स अगर नहीं हो सॉल्व करने के लिए तो हमारे अंदर वो विजडम नहीं आए। और विजडम वास्तविक रूप में है क्या कि कृष्ण भावनामृत को वैल्यू करते रहना। अगर सारांश में बताएं तो जब हम कृष्ण भावनामृत को वैल्यू करना कम कर देते हैं समझ लेना चाहिए विजडम हमारा जाता रहा। और किसी भी चीज को कृष्ण भावनामृत तो छोड़ दीजिए, किसी भी चीज को आप वैल्यू कब करोगे जब वो बहुत कठिनाई से आपको प्राप्त होती है ना तब उसका वैल्यू बढ़ता है। जैसे कि वही मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम जब बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से उसको आप बहुत अलग अलग फॉर्मूलाज यूज कर करके शुरुआत कैसे करते हैं लेट दिस बी एक्स, और फिर कई बार एक पूरा पेज डेढ़ पेज के बाद में फिर उसका फाइनल रिजल्ट आंसर निकलता है, तब जाकर आप उसको वैल्यू करते हो या तब जाकर आपको लगता है कि हाँ सब्सटेंशियली आपने कुछ सीखा। लेकिन ऐसे ही कोई अगर डिग्री लाकर आपको दे दे पीछे से या नीचे से टेबल के नीचे से डिग्री लाकर दे दे तो डिग्री तो मिल जाएगी लेकिन वो उसका वैल्यू नहीं, वो खो भी गई तो फिर आपको लगेगा क्या वैसे भी मैंने कमाई तो थी नहीं। तो वो डिग्री अगर खो भी गई लेकिन मेहनत कर आपने अगर कोई डिग्री प्राप्त की वो डिग्री अगर खो जाए तब लगता है क्या, तो उसे कहते हैं विजडम, विजडम टू वैल्यू कृष्ण कॉन्शियसनेस, और ये इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसलिए भगवान अपने भक्तों को ऐसी स्थिति में रखते हैं ताकि वो हर एक क्षण भगवान के वैल्यू को कम ना करें, और ये सबसे बड़ा प्रहार कलयुग का भक्तों के ऊपर हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण का वैल्यू उनके जीवन में वो कम कर दें। आगे आई आस्क्ड कृष्णा फॉर करेज एंड कृष्णा गेव मी डेंजर्स टू ओवरकम। अब अगर हम भगवान से हिम्मत मांग रहे हैं, मुझे हिम्मत दीजिए, तो भाई भगवान कहते थे फिर हिम्मत दिखाने के लिए कोई अवसर भी तो होना चाहिए कि हिम्मत कहां दिखाओगे। कोई कहेगा कि मेरे अंदर बहुत हिम्मत है, चलो भाई शेर के आगे खड़े रहकर चिंगाड़ो, देखो तुम्हारी हिम्मत। तो उसकी हिम्मत आजमाई जाएगी ना कहीं पर। तो ये सारी चीजें विजडम, स्ट्रेंथ, करेज, ये जो सेकेंड लाइन अगर हम लोग नहीं दिखाते तो हमको क्या लगता है कि हाँ भाई ये सब तो भगवान को देना ही चाहिए ना अपने भक्तों के लिए, मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, भक्तों को आगे बढ़ाने के लिए। कृष्णा शुड गिव स्ट्रेंथ, कृष्णा शुड गिव विजडम, कृष्णा शुड गिव करेज, बट इंस्टेड कृष्णा गिव्स समथिंग एल्स बाय विच द क्वालिटी इज हिडन इनसाइड व्हाट कृष्णा गिव्स, वी हैव टू जस्ट अनलीश इट। देखना है उसके अंदर भगवान ने कहां छिपा के दिया, और तब जाकर हमको वो सारी चीजों का मूल्य समझ में आता। कृष्णा, आई आस्क्ड कृष्णा फॉर फेवर्स। कितनी बार हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं ना सीक्रेटली, भगवान इतना भी क्यों मुझे तकलीफ में डाल रहे हो, एक आप लक्ष्मीपति हो, एक 10 लाख का लोन है आपके लिए क्या है। बस मेरा वो 10 लाख का लोन पूरा कर दो, फिर देखो मैं कैसे मंगल आरती में आता हूं। ये लोग बार बार अटेंडेंस लेते रहते हैं, इनको ये ब्रह्मचारियों को तो कुछ लोन वोन है नहीं, इनको तो और क्या, ये तो इत्मीनान से फिर ना सुबह और करते क्या, उठ जाते हैं आते हैं, उनको बाकी प्रॉब्लम क्या है, इनको मालूम नहीं EMI भरना क्या होता है, कुछ मालूम है क्या इनको। कई बार हम थोड़े ऐसे फेवर्स भगवान से मांग लेते हैं कि भगवान देखो आप ही के लिए भक्ति के लिए मांग रहा हूं मैं, ऐसा ये मत समझना कि मैं कोई बहुत ना मटेरियलिस्टिक हो गया, मटेरियलिस्टिक नहीं हूं, आप ही के भक्ति के लिए, आपका ही भला होगा भगवान। भगवान आप ही का भला होगा। तो सीक्रेटली हम कुछ ना कुछ भौतिक फेवर्स भगवान से मांगते रहते, लेकिन भगवान उसके बदले में देते क्या है, एंड कृष्णा गेव मी अपॉर्चुनिटीज टू मेक थिंग्स टर्न फेवरेबल फॉर मी। हम संडे भागवतम क्लास में चर्चा कर रहे थे अवसरवाद, परीक्षित महाराज जो बने सबसे बड़े अवसरवादी, तो हमें भगवान के लैंग्वेज को डिकोड करना सीखना है कि हमारे जीवन में भगवान कहां कहां अलग अलग तरीके से अवसर प्रदान कर रहे हैं, और ये सब भगवान क्यों करते हैं, ताकि हम भगवत धाम जाने के योग्य बने, क्योंकि ये सारी चीजें हमें योग्य बनाती हैं भगवत धाम जाने के लिए। तो किसी कि कोई रियलाइजेशंस, एक्सपीरियंसेस इसके कनेक्शन में, फेवर्स या अपॉर्चुनिटीज या करेज या डेंजर्स, एनीवन हैज टू शेयर एनीथिंग। आप लोग बाद में भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको अभी याद नहीं आ रहा है. फिर आई आस्क्ड कृष्णा फॉर लव. अब आप कहोगे भाई ये तो बहुत ही एक जस्ट और वाजबी चीज है ना मांगना भगवान से प्रेम. आप भी लोग तो बोलते हैं कि कृष्ण प्रेम प्रेम भक्तों के बीच में और प्रेम होना चाहिए ना, ये तो मांगने इसमें इसमें मटेरियलिस्टिक क्या हो गया, क्या भगवान ये भी पूरा नहीं करेंगे. आई आस्क्ड कृष्णा फॉर लव एंड कृष्णा गेव मी ट्रबल्ड पीपल टू हेल्प. तो हमारे अंदर जो चैतन्य महाप्रभु का ये जो प्रचार का आंदोलन है इसके अंदर हम भगवान का जो प्रेम है उनके अंशों के प्रति, जितने बद्ध जीव हैं, जितने जितने जीव हैं, ऐसा नहीं कि मंदिर के बाहर सब बद्ध जीव हैं और हम लोग जो हैं हम लोग सब नित्य मुक्त हैं. सब किसी न किसी प्रकार से हम लोग बद्ध हैं और हमें भगवान का जो प्रेम है इसको जब तक हम शेयर नहीं करेंगे तब तक वो जो हमारे अंदर भगवान के प्रति जो प्रेम है वो प्रेम जागृत नहीं होगा कभी. इसलिए फाइनली ये जो दो रीढ़ की हड्डी, इसमें हमें क्या समझ में आया, आई रिसीव्ड नथिंग विच आई वॉन्टेड. अभी देखो ये अगर हम बाहर वालों को बोलेंगे, कोई अगर बाहर वाला आकर हमको पूछता है कि भाई आप लोग इस्कॉन में इतने सालों से जा रहे हो, इतना सब कुछ आप लोग कर रहे हो, क्या मिला आपको, भगवान से आपने मांगा जो कुछ आपको मिला कि नहीं, तो यहां पर आई रिसीव्ड नथिंग फ्रॉम द लिस्ट विच आई वॉन्टेड फ्रॉम कृष्णा, बट रैदर कृष्णा गेव मी एवरीथिंग आई नीडेड. इसलिए मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः. क्यों भक्ति भगवान श्री कृष्ण की करने जुड़ने के लिए भगवान कह रहे हैं कि बहुत दुर्लभ व्यक्ति आते हैं मनुष्य, और उसमें भी ये सारी चीजों को झेलने के बाद टिके रहना भक्ति में और भी दुर्लभ. इसलिए हम कहते हैं ना टू कम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस इज वेरी रेयर, टू स्टे इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज इवन मोर रेयर, एंड द रेयरेस्ट इज टू स्टे हैप्पी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये सबसे रेयर है. इसलिए जब तक कि हम हमारे फंडेज, ये वर्ड यूज करते हैं ना आजकल फंडेज, जब तक कि हम हमारे फंडेज क्लियर नहीं रखेंगे तब तक भगवान श्री कृष्ण हमारे एकदम निकट होने के बावजूद अनभिज्ञ रहेंगे. इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि मैं छिपा रहता हूं, मेरे ऊपर एक आवरण है कि लोग सोचते हैं कि वो मुझे जानते हैं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी पश्यन अपि न पश्यति. तो वो हमारे साथ कई वर्ष भक्ति में रहने के बाद भगवान की भक्ति नाम जप इत्यादि धामवास सब कुछ होने के बाद भी ये आप इस भ्रम में मत रहना कि मैं भगवान को पूर्ण रूपेण जान लूंगा या जान लिया है. इसलिए हमको हर समय जो हमने वो स्लाइड दिखाया आपको कि जो विल बोन है वो जो रीढ़ की हड्डी है गुरु साधु और शास्त्र, कभी हमको ये नहीं समझना चाहिए कि बस भक्ति के कुछ वर्षों तक मुझे गुरु साधु शास्त्र की जरूरत है और उसके बाद फिर मैं खुद गुरु साधु शास्त्र बनूंगा। कई बार हमारा वो भ्रम रहता कि अरे ये लोग क्या सिखाएंगे, बहुत हो गया अभी, मैं जितना मेरे को जितनी स्टोरियां एग्जाम्पल्स वगैरह सारे मैंने अभी सुन लिए हैं, बोल लिए हैं, लिख लिए हैं, बस अब मुझसे संप्रदाय शुरू होना चाहिए। तो जिस दिन हम इस भ्रम के चपेट में आ जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण हमारे ग्रिप से निकल जाते हैं हमेशा के लिए। इसलिए जो हमने रिस्क फैक्टर की चर्चा की आज, और रिस्क फैक्टर के साथ साथ ये जो लिस्ट है हमारे जीवन में निकालना, ये लिस्ट बनाना, विल लिस्ट ये बनाना, ये सबसे बड़ा रिस्क इस भौतिक संसार में हो सकता है। इसलिए हमारे कृष्ण भक्ति में हरेक के जीवन में आप देखो तो सब्जेक्टिवली ये सारी चीजें आपको ट्रांसलेट करनी पड़ेगी, कि यदि एक पर्टिकुलर भक्त जो है उसके जीवन का जो लिस्ट है उसको आप कभी इमिटेट नहीं कर सकते। अभी हाल ही में एक भक्त बंबई से आए थे तो मेरे साथ चर्चा कर रहे थे, वो अलग अलग प्रश्न पूछ रहे थे कि मैं जब इनको देखता हूँ, ये भक्त की भक्ति को मैं देखता हूँ, या ये सीनियर ब्रह्मचारी को जब मैं देखता हूँ, या ये मैं सन्यासी को जब देखता हूँ, तो मेरे अंदर अलग अलग प्रकार से एक द्वंद्व शुरू हो जाता है। मतलब वो क्या कर रहे थे कि वो कंपेयर कर रहे थे कि जब ये सन्यासी गौर लीला सुनाते हैं और वही पास टाइम जगह मदई का वही पास टाइम ये सन्यासी सुनाते, तो मुझे ये सन्यासी और ये सन्यासी को मैं कंपेयर करना शुरू कर दिया कि ये उनकी तरफ क्यों नहीं सुनाते और ये उनकी तरफ क्यों नहीं सुनाते। तो मैंने उनको कहा कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते कि सब मेरे जो प्रचारक हैं या सब मेरे जो प्रतिनिधि हैं, सब मेरे जो पार्षद भक्त हैं, वो सब एक समान हो। इसको मायावाद कहते हैं, ये वैष्णविज्म में मायावाद है। तो मैंने उनको कहा कि जैसे हमारे राधा गोपीनाथ के सीनियर ब्रह्मचारी से, तो अगर मैंने कहा कि गोविंद प्रभु हैं या गौरांग प्रभु हैं या राधा गोपीनाथ प्रभु, तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि गोविंद प्रभु गौरांग प्रभु की तरह लेक्चर दें, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि गौरांग प्रभु गोविंद प्रभु की तरह लेक्चर दें। नहीं, वो अपने आप में जो उन वो भगवान को प्रस्तुत कर रहे हैं वो हमें प्रेरणा देता है। और सबको एक ही कैटेगरी में डाल देना, सबको एक ही कंपार्टमेंट में डाल देना कि नहीं सब ऐसे ही होने चाहिए, तो उसमें सब ब्रह्म ज्योति में फैला रहे हैं हम लोग, सबको ब्रह्म ज्योति में फैला के रखेंगे, सब एक समान ब्रह्म ज्योति की तरह। तो इसलिए हमारे जीवन में भी हमको ये समझ लेना चाहिए कि ये सारे जो हमने चर्चाएं की कि डेंजर्स, ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स और दूसरों के साथ डील कर, ये हर एक जीवन, हर एक भक्त के जीवन में भगवान बहुत ही सब्जेक्टिवली सेपरेटली भेजेंगे, और कभी भी दो भक्तों को कंपेयर मत करो, या स्वयं को भी किसी और से कंपेयर मत करो कि भाई वो भी तो सेम कंपनी में काम करता है, वो भी तो सेम सोसाइटी में रहता है, उसकी भी तो दीक्षा मेरे ही साथ एक ही दिन हमारी दीक्षा हुई है, और वो भी महाराष्ट्रियन है, मैं भी महाराष्ट्रियन हूं, वो भी वरण भात खाता है, मैं भी वरण भात खाता हूं, उसके भी घर पे गौर नेता है, मेरे भी घर पे गौर नेता है, वो सेम हाइट के तो फिर मेरे को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, उसको क्यों नहीं हो रही? प्रश्न क्या, उसको क्यों नहीं हो रही? मेरा ये जीवन इतना अस्त व्यस्त क्यों है? और उसके घर का सीसीटीवी देखो आप, तो वहां पर अलग प्रोग्राम चल रहा है, वहां का प्रोग्राम, वो भी वो अपनी समस्याएं लेके वो भी इसी प्रकार से कंपेयर कर रहे हैं, सारा उसका भी लिस्ट वही है, और वो कि मेरे जीवन में ऐसी तपस्या, उसके जीवन में, तो वो जिस दृष्टिकोण से समस्या को देख रहा है, हम उसको समस्या नहीं मान रहे, और वाइस वर्सा। इसलिए जैसे भगवान के पार्षद अलग अलग रसों में भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, वैसे ही भौतिक संसार में इस कलयुग में भगवान के जो स्ट्रगलिंग डिवोटीज हैं, हम लोग सब कर्षति लगे हुए हैं, कर्षण करते करते भक्ति कर रहे हैं, डुलकी मारते मारते सोलह माला कर रहे हैं, हाँ समझ में आ रहा है, फिर भी लेक्चर के समय बोरिंग लगता है, समझ में आ रहा है प्रभु जी बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है, बहुत हो गया अभी, थोड़ा जोक वोक भी बोलो तो थोड़ा वो टेंशन दूर होगा दिन भर का, पहले से इतने टेंशन में हम लोग काम वाम करके आते हैं, वो भी आज मंडे है, समझना चाहिए आपको, कल छुट्टी भी नहीं है, मंडे इतना तकलीफ से हम लोग आए और भी यहां पर आप प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रहे हो कि मंगल आरती में क्यों नहीं आए, और बताइए आपका अब बताएं क्या, अभी पूरा जीवन ही है अभी ये, तो पर आपने तो पावर पॉइंट बना दिया है, बार बार एक स्लाइड के ऊपर एक्सपीरियंस बताओ, ये बताओ, अभी एक्सपीरियंस बनाना शुरू करूंगा तो आपका पावर पॉइंट बंद हो जाएगा, मेरा ही लेक्चर शुरू हो जाएगा। तो ये जो अलग अलग वैरायटी की जो तकलीफें, जद्दोजहद जिसको बोलते हैं, वो हमें हमारे लिए जो साक्षात्कार जरूरी है वो दिलाएगी। इसलिए हमारा जो भगवान के साथ रस आध्यात्मिक संसार में है, उसको जागृत करने के लिए भगवान हमें जो तकलीफें देंगे वो उस रस को जागृत करने के लिए होगी, ये समझ लीजिए। इसलिए जो वैरायटीफुल स्ट्रगल्स हैं डिवोटीज के, आप सोचिए कि कई डिवोटीज 20-25 साल, हमारे आनंद विंदावन प्रभु का एग्जाम्पल, कितने साल से वो भागवतम सुन रहे हैं, जब भी भागवतम में महाराज एनी क्वेश्चंस, पहला माइक उनका उठता है, तो कोई बोले इतने सालों से इनके प्रॉब्लम ही एंड नहीं होते। क्योंकि भगवान जो है वो हर समय अपने भक्तों को अलर्ट और अटेंटिव रखना चाहते हैं, और उसके लिए ये जरूरी नहीं कि हर एक भक्त को भगवान किसी प्रॉब्लम में डालकर ही अलर्ट और अटेंटिव रखते, नहीं, ध्रुव महाराज को भगवान ने सब कुछ दिया और उसके द्वारा अलर्ट और अटेंटिव रखा, सुदामा उनको भगवान ने सब कुछ दिया और अलर्ट और अटेंटिव रखा, पांडवों से सब कुछ ले लिया, वनवास इत्यादि, तो भगवान हर एक भक्त के साथ उसके लिए क्या जरूरी क्या आवश्यक है भगवान उस प्रकार से डील करते हैं। तो ये हमारा आज का टेक होम मैसेज, घर जाइए लेकर जाइए इस मैसेज को, ओके, ताकि आपके जीवन में आप इसे उतार सको, इस पर अमल कर सको, ताकि हमारा मंगल आरती का अटेंडेंस बढ़े। किसी का कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स? जय श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा मदन गोपाल ललिता विशाखा देवी की, निताय गौर प्रेमानंदी। कोई अनाउंसमेंट्स है प्रभु जी? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासो नैव जायते शरीर विद्या जा जोड़ेन्द्रिय ताहे का जीवे फेले विषय सागरे तार मध्ये जिभारती लोभमय सुदुर्मती ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ दयामा कोरी बार हे जिभजा स्वप्रसाद नदी लोभा सेयन अमृत पाओ श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमिड़ा को श्री चैतन्य निता जय श्री राधा मदन गोपाल निताय गौर चंद्र महाप्रसादम की जय।